So first problem of the marine fishes is the constant threat of dehydration, क्योंकि बॉडी से पानी जो है वो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो इनको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होंगे। क्यों बाहर निकलेगा ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, हाइपरटोनिक जो एनवायरनमेंट में सेल का बिहेवियर था उस टॉपिक में, ठीक हो गया। तो सेल्स से पानी जो है वो बाहर की तरफ जब मूव करेगा तो फिश जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगी, और यही इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए वो क्या करेगी, इसको सॉल्व करने के लिए वो पानी पिएगी। मैरीन फिश कंटिन्यूअसली इंजेस्ट द सी वाटर, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है कि ड्रिंक्स एम्पल वाटर, ये पानी कंटिन्यूअसली ऐसे ड्रिंक करती है, पीती है, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो कि इसकी बॉडी से निकल निकल कर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है। सो दिस पोजेसिज द रिस्क ऑफ अक्यूमुलेटिंग एक्सेसिव साल्ट इन दियर बॉडीज, क्योंकि ये साल्टी वाटर है, तो अगर ये इतना ज्यादा साल्टी वाटर पीती जा रही हैं, तो इससे इनकी बॉडी में वाटर की कमी तो कंपनसेट हो जाएगी, लेकिन साथ में एक सेकंड प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी साल्ट अक्यूमुलेशन की, कि साल्ट्स भी तो इनकी बॉडी में अक्यूमुलेट फिर ज्यादा होंगे ना। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई डिहाइड्रेशन वाली, तो दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि साल्ट्स अब बॉडी में जो है वो ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि जो पानी पिया जा रहा था वो साल्टी था। अब दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये क्या करेंगे, साल्ट्स को रिमूव करने के लिए ये क्या करेंगे कि ये अपने गिल्स के जरिए ये काम सर अंजाम देंगे। टू मेंटेन द बैलेंस मैरीन फिशेज हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स इन देयर गिल्स दैट एक्टिवली पंप आउट, एक्टिवली पंप आउट से मुराद है कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे बाय द यूज ऑफ एटीपी, और वो साल्ट्स को यानी कि एक्सेसिव साल्ट्स को जो कि बॉडी में आए हुए हैं उनको ऐसे बाहर फेंकेंगे बॉडी से। एक्टिवली एक्सक्रीट द आयन्स थ्रू द गिल्स अलोंग विद वाटर। तो इस तरह उन्होंने अपनी दूसरी प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा लिया। तो वो क्या करते हैं, इस तरह अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, कि एक तो पानी ज्यादा पिया डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फिर उसके नतीजे में जो साल्ट्स ज्यादा आए उनको बाहर निकालने के लिए वो अपने गिल्स का यूज कर लेते हैं और उनको बाहर निकाल लेते हैं। और सिर्फ गिल्स का ही नहीं, वो अपनी किडनीज का भी यूज करते हैं। मैरीन फिशेज प्रोड्यूस्ड हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन से क्या मुराद है कि वो जो यूरिन एक्सक्रीट करेंगे बॉडी से उस यूरिन में साल्ट्स हाई होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि साल्ट से छुटकारा पाना है ना, गिल्स के जरिए भी तो छुटकारा ही पा रहे हैं ना, तो यूरिन के जरिए भी छुटकारा पाते हैं। और जब यूरिन के अंदर साल्ट ज्यादा होंगे तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन कहलाएगा, तो ये मछलियां कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करती हैं। तो इस तरह भी ये अपनी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करती हैं। फिर एक और भी तरीका है, बाय द रेक्टल ग्लैंड्स। फिश की बॉडी में ना रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आप देखिए ये फिश है, और इस फिश में यहां पे देखें एंड पे ये लिखा हुआ है रेक्टल ग्लैंड। इट इज एन एपिथेलियल ऑर्गन इन द डिस्टल इंटेस्टाइन, डिस्टल का मतलब होता है एंड वाला हिस्सा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो हिस्सा होता है उसको डिस्टल हिस्सा कहते हैं, और नियर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होता है उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। तो आंत का जो आगाज है वो इधर से हो रहा है ना, तो इधर से फिर आगे आंत का जो एंड है वो डिस्टल हुआ आंत का, तो उस डिस्टल हिस्से पे ये रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये 3 से 4 ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है साल्ट्स को ब्लड में से एक्सट्रैक्ट करना और फिर उनको रिलीज कर देना क्लोएका के जरिए, ठीक हो गया। सो दे सर्व अ सिंगल फंक्शन, ये जो 3 से 4 ट्यूब्यूल्स हैं ये एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं NaCl को फ्रॉम द ब्लड एंड रिलीज करते हैं इनटू द क्लोएका, वेयर दे मिक्स विद द डाइजेस्टिव कंटेंट्स, जाहरी बात है क्लोएका के जरिए सॉलिड वेस्ट भी बाहर आ रहा होगा, डाइजेस्टिव कंटेंट्स भी आ रहे होंगे, तो उनके साथ वो साल्ट्स मिलकर क्लोएका के जरिए जो हैं बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह ये तीसरा तरीका हो गया जो एक्सेसिव साल्ट्स बॉडी में आए हुए हैं उनसे छुटकारा पाने का। तो देखें कि मैरीन वाटर फिश ने कितने अच्छे तरीके से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी बॉडी फ्लूइड्स की जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखा हुआ है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक ओस्मोरेगुलेटर है। ठीक हो गया।